तुलसीदास। विषय अलंकार विधान। पृष्ठ 93। भाव का जो स्वाभाविक उद्रेक और विभाव का जो स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण गोस्वामी जी में पाया जाता है, उसका दिग्दर्शन तो हो चुका। अब जरा उनके अलंकारों की वानगी भी देख लेनी चाहिए। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है। अतः अलंकारों की परीक्षा हम इसी दृष्टि से करेंगे कि वे कहाँ तक उक्त प्रकार से सहायक है। यदि किसी वर्णन में उनसे इस प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुँचती है, तो वे काव्य अलंकार नहीं, भार मात्र हैं। यह ठीक है कि वाक्य की कुछ विलक्षणता, जैसे श्लेष और यमक द्वारा श्रोता या पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी अलंकार की थोड़ी बहुत योजना होती है, पर उसे बहुत ही गौर समझना चाहिए। काव्य की प्रक्रिया के भीतर ऊपर कही बातों में से किसी एक में भी जिस अलंकार से सहायता पहुँचती है, उसे हम अच्छा कहेंगे, और जिससे कई एक में एक साथ सहायता पहुँचती है, उसे बहुत उत्तम कहेंगे। पैराग्राफ चेंज। अलंकार के स्वरूप की ओर ध्यान देते ही इस बात का पता चल जाता है कि वह कथन की एक युक्ति या वर्णन शैली मात्र है। यह शैली सर्वत्र काव्य अलंकार नहीं कहला सकती। उपमा को ही लीजिए, जिसका आधार होता है सादृश्य। यदि कहीं सादृश्य योजना का उद्देश्य बोध कराना मात्र है, तो वह काव्य अलंकार नहीं। नील गाय गाय के सदृश होती है, इसे कोई अलंकार नहीं कहेगा। इसी प्रकार एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मरेउ सोउ में भ्रम अलंकार नहीं है, केवल वस्तुत्व, केवल वस्तुत्व या प्रेमत्व जिसमें हो वह अलंकार नहीं। फुटनोट 1। अर्थ साधर्म्यम कवि समय प्रसिद्धम कांति मत्वादि न तु वस्तुत्व प्रमेयत्वादि ग्राह्यम् विद्याधर। फुटनोट समाप्त। अलंकार में रमणीयता होनी चाहिए, चमत्कार न कहकर रमणीयता हम इसलिए कहते हैं कि चमत्कार के अंतर्गत केवल भाव, गुण, रूप या क्रिया का उत्कर्ष ही नहीं, शब्द कौतुक और अलंकार सामग्री की विलक्षणता भी ली जाती है। जैसे बादल के स्तूपाकार टुकड़े के ऊपर निकले हुए चंद्रमा को देख यदि कोई कहे कि मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा हुआ है, तो कुछ लोग अलंकार सामग्री की इस विलक्षणता पर, कवि की इस दूर की सूझ पर ही वाह वाह करने लगेंगे। पृष्ठ 94। पर इस उत्प्रेक्षा से ऊपर लिखे प्रयोजनों में से एक भी सिद्ध नहीं होता। बादल के ऊपर निकलते हुए चंद्रमा को देख हृदय में स्वभावतः सौंदर्य की भावना उठती है, पर ऊंट पर रखा हुआ घंटा ऐसा कोई सुंदर दृश्य नहीं जिसकी योजना से सौंदर्य के अनुभव में कुछ और वृद्धि हो। भावानुभव में वृद्धि करने के गुण का नाम ही अलंकार की रमणीयता है। पैराग्राफ चेंज। अब गोस्वामी जी के कुछ अलंकारों को हम इस क्रम से लेते हैं। पहला, भावों की उत्कर्ष व्यंजना में सहायक। दूसरा, वस्तुओं के रूप कोष्टक में सौंदर्य, विशेषणत्व आदि का अनुभव तीव्र करने में सहायक। तीसरा, गुण का अनुभव तीव्र करने में सहायक। चौथा, क्रिया का अनुभव तीव्र करने में सहायक। एक भावों की उत्कर्ष व्यंजना में सहायक अलंकार। अशोक के नीचे राम के विरह में सीता की चांदनी धूप सी लगती है। डहकू न है उजियरिया निसी नहीं धाम, जगत जरत असलागु मोही बिनु राम। यह निश्चय अलंकार सीता के विरह संताप का उत्कर्ष दिखाने में सहायक है। इसी विरह संताप की प्रचंडता असिद्धास्पद हेतु उत्प्रेक्षा द्वारा भी दिखाई गई है। यही वाटिका बसती तह खग मृग, तजी तजी भजे पुरातन भौन। श्वास समीर भेंट भई भोरेहूँ तेहि मगपग न धर्यो त्यु पौन। मरते हुए जटायु से राम कहते हैं कि मेरे पिता से सीता हरण का समाचार न कहना। सीता हरण तात जनी कहेउ पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहि के दशानन आई। यह पर्यायोक्ति राम की धीरता और सुशीलता की वंजना में कैसी सहायता करती हुई बैठी है। राम सीता हरण के समाचार द्वारा अपने पिता को स्वर्ग में भी दुखी करना नहीं चाहते, साथ ही अपनी वीरता भी अत्यंत संकोच और शिष्टता के साथ प्रकट करते हैं। राम कैसा अर्थांतर संक्रमित पद है। पैराग्राफ चेंज। राम की चढ़ाई का हाल सुनकर इतनी घबराहट हुई, इतनी आशंका फैली कि बसत गढ़ लंक लंकेश रावण, अछत लंक नहीं खात को भात रांधेओ। यहाँ आशंका को व्यक्त करने में लक्षणा और व्यंजना के मेल में विभावना कितना काम दे रही है। देखिए यह रूपक रतिभाव की अनन्यता दिखाने के लिए कैसा दृश्य ऊपर से ला रहा है। त्रिषित तुम्हारे दरस कारण चतुर चातक दास, वपुष वारिद वरवी छवि जल हरहूँ लोचन प्यास। एक नई उपमा देखिए। जब कोई राजा धनु न तोड़ सका, तब जनक ने झोब से भरे उत्तेजक वचन कहे, जिन्हें सुन लक्ष्मण को तो अमर्ष हुआ, पर अभिमानी मानी राजाओं की यह दशा हुई। जनक वचन छुए बिरवा लजारू कैसे, वीर रहे सकल सकुच सिर नाई के। इस उपमा में लज्जा का उत्कर्ष भी है और क्रिया भी ठीक बिंब प्रतिबिंब रूप है, अतः यह बहुत अच्छी है। उन्हीं राजाओं की ईर्ष्या इस विभावना द्वारा कही गई है। नीच महिपावली दसन बिनु दही है। राम की निह स्पर्हता और संतोष का ठीक अंदाजा करने के लिए उपमा और रूपक के सहारे कैसी बात सामने लाए हैं। असन अजरिन को समुझी तिलक तज्जियो, विपिन गवनु भले भूके अब सुनाजू भो। धर्म धुरिन धीर धीर रघुबीर जू को, कोटि राज सरिस भरत जू को राज भो। दो भावों के द्वंद का कैसा सुंदर और स्पष्ट चित्र इस रूपक में मिलता है। मन अगहूड़ तनु पुलक शिथिल भयो, नलिन भयन भरे नीर। गढ़त गोड़ मानो सकुच पंक मह, कढ़त प्रेम बल धीर। कौशल्या अपने गंभीर वात्सल्य प्रेम का प्रकाश इस पर्योक्ति द्वारा जिस प्रकार कर रही है, वह अत्यंत उत्कर्ष सूचक होने पर भी बहुत ही स्वाभाविक है। राघव एक बार फिरी आओ, एक बार बाजी बिलोकी आपने बहुरो बनही सिधाओ। जे पय पयाई पोसी कर पंकज बार बार चुचकारे, क्यों जीवही मेरे राम लाड़िले ते अवनिपट बिसारे। सुनहु पथिक जो राम मिलही, बन कहियो मातु संदेशो तुलसी मोहि और सबहिन ते इनको बड़ो अंदेशो। जिसके वियोग में घोड़े इतने विकल हैं, जिसके वियोग में माता की क्या दशा होगी, यह समझने की बात है। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, कहूँ मातु पितु जीव ही कैसे। पर्योक्ति का आश्रय लोग स्वभावतः किस अवस्था में लेते हैं, यह राम का इन शब्दों में आज्ञा मांगना बता रहा है। नाथ लखन पुर देखन चहई, प्रभु सकोच उर प्रकट न कहई। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम को जो मानसिक व्यथा, जो दुख हो रहा था, उसे लक्ष्मण ने उठकर देखा और वे कहने लगे, हृदय छाड़ मेरे पीर रघुवीर, पाई संजीवन जागी कहत, यो प्रेम पुलकित बिसराय शरीरे। पृष्ठ 96। इस असंगति से संजीवनी बटी का प्रभाव कोष्ठक में पीड़ा दूर करने का कोष्ठक बंद भी प्रकट हुआ और राम के दुख का आतिशय भी। अलंकार का ऐसा ही प्रयोग सार्थक है। रावण और अंगद के संवाद में दोनों की व्याज निंदा बहुत ही अच्छी है। रावण के इस वचन से कुछ बेपरवाही झलकती है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तह नाचहि परिहरि लाजा। नाची कुदी करी लोग रिझाई, पतिहति करे धर्म निपुनाई। बंदरों का आदमी के हाथ में पड़कर नाचना कूदना एक नित्य प्रतिदेखी जाने वाली बात है। अंगद के इन नीचे लिखे वचनों में कैसा गूढ़ उपहास है। नाक कान बिनु भगनी निहारी, क्षमा की न तुम धर्म बिचारी। लजवंत तुम सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ।